तत्वार्थ सूत्र लेक्चर नंबर 2 सूत्र नामक शास्त्र है उसके ऊपर रामजी भाई दोषी ने जो टीका की है उसका नाम मोक्ष शास्त्र है। उस पुस्तक को हम देख रहे हैं, उसको देखते हुए हम पृष्ठ क्रमांक 3 पर आए हैं। यहां हमें इस पुस्तक में क्या क्या बातें बताई गई हैं, उसका इन शॉर्ट में पूरा ब्यौरा देते हैं ताकि इस शास्त्र में क्या क्या बातें हैं। एक बात तो निश्चित है, यहां पहले ही अधिकार के पहले सूत्र में उन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहते हुए आगे दूसरे में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तो ये 7 तत्वों के बारे में ही यह शास्त्र में सारी बातें हमें बता रहे हैं। फिर भी उसके अनुषंग से अन्य बातें भी यहां होगी, वो क्या क्या है वो हमें यहां बताना चाहते हैं। तो यहां बता रहे हैं, हमने 6 पॉइंट तो कल देखे थे और ये छठा जो पॉइंट था वो बहुत ही मार्मिक है, क्योंकि ये बात तो निश्चित है कि ये जो पुद्गल है ना, ये पुद्गल है, ये सुख चाहता होगा कि नहीं? अमूल भाई, नहीं। क्यों नहीं? दो कारण बताने। हाँ, आप बताएंगे। ज्ञान गुण, सुख जीव का विशेष गुण है। दूसरा कारण भाई, हाँ बोलो बोलो।
चारित्र गुण में नहीं है।
हाँ, तो चारित्र गुण नहीं होगा तो
कैसे चाहेगा?
हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यही मैं चाहता था। यहाँ ज्ञान गुण का कोई कारण ही नहीं है, ज्ञान गुण तो जानने का कार्य करेगा, लेकिन यहाँ बात क्या हो रही, सुख चाहता नहीं। सहना और चाहना जो है वह तो चारित्र गुण की विभाव पर या इच्छा होना तो उसमें है नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, सुख गुण उसमें है ही नहीं, तो वो दुखी हो ही नहीं सकता है, ना दुखी हो सकता है ना सुखी हो सकता है। लेकिन जीव द्रव्य ऐसा है कि उसमें सुख नाम का भी गुण है और वो है नहीं, इसलिए उसकी चाहना भी चल रही, चारित्र गुण की अपेक्षा। तो यहां क्या कह रहे हैं, यदि जीव को सच्चा सुख चाहिए, चाहिए वाली बात है ना, तो क्या करना चाहिए? तो कहते सम्यक दर्शन करना चाहिए। इसके बारे में हमने कल बहुत सारी बातें देखी थी। एक बात है कि वो क्यों दुखी है, तो कह रहे हैं कि उसको अपने स्वरूप का पता नहीं है, पर पदार्थों में अपनत्व स्थापित करता है, इसलिए वह दुखी है। ये बात बताते हुए भी हम आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर, इस मोक्ष शास्त्र के 10 अध्यायों में निम्नलिखित विषय लिए गए हैं। पहले अध्याय में मोक्ष का उपाय और जीव के ज्ञान की अवस्थाओं का वर्णन है। ये तो आगे बात आने वाली है, लेकिन ज्ञान की अवस्था क्या हो सकती है? वीरेश भाई, ज्ञान की अवस्थाओं का वर्णन बताने जा रहे हैं। तो ज्ञान की अवस्था क्या हो सकती है? यानी ज्ञान की अवस्था यानी ज्ञान की पर्याय, और पर्याय वैसे देखा जाए तो पांच प्रकार की, और कुक की बात करेंगे तो आठ प्रकार की। अब वहां तो बताएंगे अभी, वो तो खाली विषय आगे आने वाला है, हम उसका पहला सोचकर आगे जाएंगे। और दूसरे अध्याय में जीव के भाव लक्षण और शरीर के साथ जीव का संबंध का वर्णन किया गया है। तीसरे और चौथे अध्याय में विकारी जीवों के रहने के क्षेत्रों का वर्णन। ये विकारी जीव है कैसे, कौन से जीव हो सकते हैं नलिन भाई? दिव्य बहन, हाँ, विकारी यानी जो संसार में रखड़ने वाले हैं उनकी बात। क्योंकि देखो क्या बताया, विकारी जीवों के रहने के क्षेत्रों का वर्णन। अभी भैया तुम नरक की क्यों बात बताना चाहते हैं, स्वर्ग की क्यों बात बताना चाहते हैं, वहां का सर, तो ये तुमने विकार किया ना, तो तुमको यहां यहां जाना पड़ेगा, और यहां के आया है दोनों बातें। इस प्रकार प्रथम चार अध्याय में पहले जीव तत्व का वर्णन किया। अब छठे सातवें अध्याय में जीव के नवीन विकार भाव यानी कौन से आश्रव तथा उनका निमित्त पाकर जीव का सूक्ष्म जड़ कर्म के साथ होने वाला संबंध बताया है। इस प्रकार तीसरे आश्रव तत्व का वर्णन किया है। अच्छा पांचवा अध्याय रहेंगे बीच में। अच्छा अच्छा अच्छा, तीसरे चौथे के बाद एकदम छठे सातवीं में गया। तीसरे चौथे के बाद पांचवें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है। ये छठे सातवीं की भी बात आ गई, आश्रव तत्व की बात। अब आठवें अध्याय में यह बताया गया है कि जीव का जड़ कर्मों के साथ किस प्रकार संबंध होता है, और वह जड़ कर्म कितने समय तक जीव के साथ रहते हैं। इस प्रकार इस अध्याय में चौथे बंध तत्व का वर्णन किया गया है। नवे अध्याय में यह बताया गया है कि जीव के अनादि काल से न होने वाले धर्म का प्रारंभ, यानी अभी तक उसको धर्म की शुरुआत नहीं हुई है, वो प्रारंभ संवर से होता है। जीव की यह अवस्था होने पर उसे सच्चे सुख का प्रारंभ होता है, और क्रमशः शुद्धि के बढ़ने पर विकार दूर होता है, उससे निर्जरा अर्थात जड़ कर्म के साथ के बंध का अंशतः अभाव होता है। इस प्रकार नौवें अध्याय में पांचवा और छठा अर्थात संवर और निर्जरा तत्व बताया गया है। दसवें अध्याय में जीव की शुद्धि की पूर्णता, सर्व दुखों से अविनाशी मुक्ति और संपूर्ण पवित्रता मोक्ष तत्व है, इसलिए आचार्य देव ने सातवां मोक्ष तत्व दसवें अध्याय में बतलाया है। पॉइंट नंबर एट, मंगलाचरण में भगवान को कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाला कहा है। कर्म दो प्रकार के हैं, एक भाव कर्म और दूसरा द्रव्य कर्म। ये अभी भाव कर्म क्या है और द्रव्य कर्म क्या है पूछने की जरूरत है क्या? अमोल भाई कहते हैं तो आगे बढ़ेंगे। भाव कर्म यानी क्या और द्रव्य कर्म यानी क्या? कर्म दो प्रकार के बताए ना, कुछ याद आता है आपको? नहीं आता है, कोई बात नहीं। कौन बताना चाहेगा? अरविंद भाई, जीव के जो परिणाम है मोह रूप राग द्वेष रूप, उसको भाव कर्म कहेंगे। अभी एक मिनट है, बोलना नहीं। अभी द्रव्य कर्म बता पाएंगे कि नहीं? अच्छा प्रेरणा बहन बताएंगे। मैं सच कहते तो पूछना नहीं चाहता था। द्रव्य कर्म यानी हाँ ज्ञाना वर्णादि आठ कर्म। अभी रे भाई आठ कर्मों के नाम तो आप बता पाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है? बोलो बोलो बोलो। ज्ञाना वर्णी है, दर्शना वर्णी है, बहुत अच्छा क्रम आगे पीछे हुआ कोई बात नहीं। हाँ इसको द्रव्य कर्म कहेंगे। तो क्या कह रहे हैं देखो कि कर्म दो प्रकार के हैं, यानी जीव की परिणामों की अपेक्षा से जो होंगे उसको भाव कर्म कहेंगे, और उस समय जो पुद्गल में यानी कारमान वर्गणा में जो कर्म रूप परिणति होती है और द्रव्य कर्म बनते हैं उसको द्रव्य कर्म कहेंगे। जब जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से भाव कर्म रूपी पर्वतों को दूर करता है। क्या कहा? एक्चुअली देखो ये कितनी सहजता से बात बता रहे हैं कि कभी भी कोई भी जीव कितना ही बलशाली क्यों न हो द्रव्य कर्म को छू नहीं सकता, तो उसको तोड़फोड़ करे नष्ट करे ये तो कथन पद्धति है। तो उन्होंने क्या बताया देखो, जब जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से भाव कर्म रूपी पर्वतों को यानी अपने में जो मलिनता है राग द्वेष के परिणाम में उनको हटाता है, तो कहते हैं भाव कर्म रूपी पर्वतों को दूर करता है, तब द्रव्य कर्म स्वयं ही अपने आप हट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो उन कर्मों को पता लगता होगा कि नहीं कि अभी ये शुद्ध भाव कर रहा है मुझे जाना है, उनको कैसे समझते हैं फिर कैसे निकल जाते हैं? किसका निमित्त कौन है? उत्तर बराबर है, फिर से बोलना निमित्त कौन है? निमित्त कर्म है, हट जाते हैं। सुनना फिर से, कर्म नष्ट होते हैं, विघटन हो जाता है, ये कार्य हुआ तो अभी निमित्त कौन लगाएंगे? ख्याल है ना, घबराना नहीं। तुम हमेशा ऐसा ही सोचते हो कि मैं जो बोलूंगा गलत निकलेगा गलत निकलेगा, ऐसा ही नहीं, भले निकले ना क्या तकलीफ है। ये बहुत प्राइमरी बातें हैं, आप हंसते होंगे कि ये क्या है, लेकिन ये बात हम समझेंगे तो आगे अपने को बहुत आसानी होगी। क्या कह रहे देखो, द्रव्य कर्म स्वयं ही अपने आप हट जाते हैं तो उनको ज्ञान को होगा कि नहीं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसा जीव की शुद्धता का और कर्म क्षय का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यहां यही बताया गया है, जीव जड़ कर्म को परमार्थता नष्ट कर सकता है यह कहने का आशय नहीं है, यानी ये हम ये नहीं कहना चाह रहे कहते हैं। नौवा, मंगलाचरण में नमस्कार करते हुए देवागमन यानी देवों का आगमन, समव शरण चामर और दिव्य शरीर आदि पुण्य विभूतियों का किया गया है जो तीर्थंकर भगवान के पास होती है, क्योंकि पुण्य आत्मा का गुण क्योंकि पुण्य आत्मा का गुण नहीं है, यानी वो आत्मा की शुद्धता उससे नहीं होती, गुण यानी उसका कोई ये नहीं है, ये तो है पुण्य का उदय और बाकी सारी बातें होती है, लेकिन उससे कोई आत्मा को वो आत्मा का गुण नहीं कहा जाएगा। हमने देखा था ना तीर्थंकरों के कितने गुण बताए हैं मालूम है भाई आपको? नलिन भाई अरिहंतों के बताओ, अरिहंतों को 40 वही 46। अरे वो तीर्थंकरों के होते भैया। क्या करें, हमने जैसा याद किया है ना उससे जरा कुछ अलग सा बात पूछा जाए तो हम गड़बड़ जाते हैं। सुन लो, जन्म के अतिशय केवल ज्ञान की अतिशय है और देवकृत अतिशय है और छ आठ पाँच यहाँ ये तो तीर्थंकर की अपेक्षा से ही बताए गए हैं। वह पुद्गलाश्रित गुण है, गुण पुण्य का उदय है, और आत्माश्रित कितने गुण है साहब?
चार।
नाम पूछूं? आप बोलेंगे? आप बोलेंगे, बोलो मत, तकलीफ हो। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये आत्मा के गुण है। और वो पर्याय कैसे? आत्मा के तो वो भैया पर्याय है, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण और वीर्य गुण की पर्याय है, लेकिन वो परिपूर्ण शुद्धता रूप प्रकट होती है तो उसको गुण भी कहा जाता है। तो ये बात हमने देखी, यह कह रहे हैं कि ये पुण्य आत्मा का गुण नहीं है, इसलिए इन सारी बातों का वहां कुछ वर्णन नहीं किया है। मंगलाचरण जी, जीवना परिणाम जे हो विभाव भाव छे ने, एने गुण केम केवाय? नहीं,
पुण्य ने पुण्य का उदय है, क्योंकि वो तो पुण्य तो नहीं कर रहे, पुराने जो पुण्य थे उसका भी उदय चल रहा है, तो ये सारी बाह्य विभूति मिलती है हमको, पर उसमें कुछ आत्मा का कुछ नहीं है। अब उनकी बात छोड़ो, अपने को जो पुण्य के उदय में मिला है उसमें अपना कुछ नहीं, इतना समझ लिया।
ये तकलीफ की बात है। ये तीर्थंकर की बात तक तो ठीक था भाई, अभी हमारा पैसा हमारा नहीं बोले तो क्या है, घर में आने नहीं देंगे बोले। अभी 10 नंबर मंगलाचरण में गुणों से पहचान करके भगवान को नमस्कार किया है, अर्थात भगवान विश्व के, विश्व के यानी समस्त तत्वों के ज्ञाता है। ये समस्त तत्व क्यों बताया है? यहाँ द्रव्य गुण पर्याय सभी बातें ली है, क्योंकि जीव तत्व और अजीव तत्व तो सारे मतलब द्रव्य भी आ गए, और आश्रव बंद सौम निजय इसमें सभी मतलब आ गए पर्याय। समस्त तत्वों के ज्ञाता है, मोक्ष मार्ग के नेता है, और उन्होंने सर्व विकारों यानी दोषों का नाश किया है। इस प्रकार भगवान के गुणों का स्वरूप बतलाकर गुणों को पहचान करके उनकी स्तुति की है, वैसे निश्चय से अपनी आत्मा की ही स्तुति है। यानी ये जो कुछ बता रहे हैं वो अपने पे भी घटित होगा इन फ्यूचर, अभी मत समझना नहीं तो निश्चयवासी हो जाओगे। क्यों? अभी प्रथम अध्याय शुरू करते हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग की व्याख्या। देखो यहाँ निश्चय मोक्ष मार्ग लिखा है,
यहाँ लिखा है मोक्ष प्राप्ति न उपाय।
अच्छा, मेरे यहाँ निश्चय मोक्ष मार्ग की व्याख्या लिखी है। अभी हम ये बताना चाहते हैं कि जब निश्चय मोक्ष मार्ग कह रहे हैं, नाम दे रहे हैं, तो अन्य भी दूसरा कोई मोक्ष मार्ग होना चाहिए। तो वो कौन सा होगा? तो व्यवहार मोक्ष मार्ग, ये कहने की पद्धति है, उपचार से उसके ऊपर आरोप देकर बताया जा रहा है तो एकमेव एक ही मोक्ष मार्ग, और वो क्या है वो अभी यहाँ बता रहे हैं। अभी आपने क्या बताया? मोक्ष प्राप्ति नो उपाय, गुजराती पुस्तक में ऐसा लिखा है। देखो इसका अर्थ क्या हो गया, सुनो, मोक्ष प्राप्ति नो उपाय। अब यहाँ हमारे जैन तत्वों के अनुसार यहाँ आचार्य भगवान कहेंगे कि ये मोक्ष मार्ग प्राप्ति का उपाय है। इसका अर्थ क्या हो गया कि अन्य कोई भी जो कोई प्रकार बताएंगे वो सत्य नहीं है, इसलिए यहाँ निश्चय लिखा और वहाँ मोक्ष मार्ग की प्राप्ति, मोक्ष के प्राप्ति का उपाय ना,
मोक्ष प्राप्ति,
हाँ मोक्ष प्राप्ति
निश्चय,
निश्चय मोक्ष मार्ग की व्याख्या। देखो अपने आचार्यों की ऐसी एक विशेषता है कि कभी अभी ये तो सूत्र में है, अन्यत्र भी आप देखेंगे तो बात तो अपनी बताएंगे लेकिन वो अन्य मतों का खंडन भी उसमें हो जाएगा। यानी हम दूसरी भाषा में समझदार को इशारा काफी है ऐसा कहते हैं, तो जो समझदार होगा वो समझेगा कि यही बात सत्य है, अन्यथा जो कुछ बातें बताई जाती है वो सत्य नहीं है। देखो क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। देखो यहाँ ये क्या बात बता दें, ये सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है कि सम्यक ज्ञान, और चारित्र यानी क्या, आत्मा में जो स्थिरता है स्वरूप में जो रमणता है उसी को चारित्र गुण की स्वभाव परिणति कही गई। तो क्या ऐसे तीन प्रकार के मोक्ष मार्ग है, क्योंकि तीन तीन बातें बताई ना, सही श्रद्धान सही ज्ञान, यानी हम तो सब श्रद्धान सही करेंगे, कोई कहता नहीं नहीं ज्ञान से ही हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, कोई कहता है हम आत्मा में लीनता करेंगे। तो क्या ऐसे अलग अलग तीन प्रकार है मोक्ष की प्राप्ति को, तो उसका उसको नलीफाई करने के लिए यहाँ लिखे हैं मोक्ष मार्ग। ये मोक्ष मार्ग ये जिसको हम कहते हैं सिंगुलर,
हाँ
एक वचन, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ एक वचन, और अगर जास्ती बताना होता तो मोक्ष मार्ग हा ऐसा बता दो, तो यहाँ बताया मोक्ष मार्ग, यानी ये तीनों को मिलकर ही एक मोक्ष मार्ग है, तीनों की एकता होनी चाहिए। देखो कैसी बात है, अन्यत्र अपने ही भोले जैनियों में ऐसी मान्यता है कि साहब हम तो 24 तीर्थंकर के अलावा किसी को नमन नहीं करते, तो हमारी श्रद्धा तो बिल्कुल पक्की है, और हम तो जैन कुल में जन्मे हैं, तो अन्य परमात्मा को या अन्य किसी भगवान को क्यों नमन करने जाएंगे, हम तो तीर्थंकरों को नमस्कार करते हैं। तो और दूसरे भी निकले 24 तीर्थंकर को नमस्कार करना है ना, हाँ तो हम तो 24 को ही करेंगे, फिर वो इधर का है या उधर का है नहीं समझ में आया, समझ में उससे हमें क्या लेना देना है, हाँ? बस है ना नाम फला फला है तो खत्म बात, क्योंकि हम जैन कुल में जन्मे हैं तो हमारा श्रद्धान सही है ऐसा मानते हैं। दूसरे लोग क्या समझते हैं कि हम आगम पढ़ते हैं, जो जैन शास्त्रों में जो आचार्य ने लिखे हैं तो हमारा ज्ञान भी संभव होगा, अभी थोड़ी बहुत कुछ आचरण में हम तब्दीली करेंगे, कुछ सच्चा आचरण अच्छा आचरण रखेंगे तो हमको चारित्र भी हो जाएगा, लेकिन ये बात ऐसी नहीं है। वो कैसी है वो बात आने वाली है, यानी भोली जीवों की ऐसी ऐसी अपने अपने मनगढ़ंत कल्पनाओं के अनुसार कुछ कुछ वो सोचते हैं, लेकिन वो बात सही नहीं है। अब क्या कहने देखो, अर्थ देखते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों मिलकर मोक्ष मार्ग, मोक्ष का मार्ग है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति का उपाय है। ये आपके इसमें लिखा ना गुजराती में, मोक्ष नहीं प्राप्ति नो उपाय, यानी हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो यह एक ही रास्ता है। कई अन्यत्र भी बोलते हैं कि हम ज्ञान मार्ग है, कोई कहता है भक्ति मार्ग है, कोई कहता है योग मार्ग है, तो ऐसे अन्यथा कोई भी नहीं है। अरे कहीं कहीं तो ऐसा है कि ज्ञान काम करना बंद कर दे तो उसको मोक्ष दे। देखो जो बातें बराबर सही रूप से वस्तु स्वरूप नहीं जानते हैं तो ऐसे ऐसी खोटी खोटी कल्पना उनसे ग्रसित हो जाते हैं और मानते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं। एक टीका पढ़ते हैं, सम्यक यह शब्द प्रशंसा वाचक है, प्रशंसा यानी समझे मामूल भाई, प्रशंसा यानी क्या? उसकी स्तुति करना, उसका डेकोरेट करना उसको। हाँ जी,
हाँ
एडमायर करना इसको कि यह शब्द प्रशंसावाचक है जो कि यथार्थ को सूचित करता है। यथार्थ यानी जैसा है वैसा का वैसा, विपरीत आदि दोषों का अभाव इसको सम्यक कहा। विपरीत यानी जो है उससे भी कोई गलत उल्टी मान्यता रखे, उल्टी बात समझे, तो उसका अभाव है, उसी को सम्यक कहा है। दर्शन का अर्थ है श्रद्धा। श्रद्धा यानी क्या है? ऐसा ही है, अन्यथा नहीं, ऐसा प्रतीति भाव, इसको दर्शन कहा। ये बात तो आप जानते हैं, ये दर्शन नाम के दो गुण आत्मा में हमें ऑब्वियसली ज्ञान में आएंगे। एक तो जब जब जीव के स्वभाव की बात के लिए दर्शन शब्द वापरा जाता है तो मेजोरिटीवली ये ज्ञान दर्शन वाला जो दर्शन है, यानी हम दूसरी भाषा में समझेंगे तो ज्ञाता दृष्टा, तो ये दृष्टा वाला जो कोई शब्द बना है वो दर्शन के यानी दर्शन गुण के तरफ से बना है। लेकिन जब हम यह जीव संसारी है या मोक्ष मार्ग पर चलने वाला है ऐसा अगर कोई इंडिकेशन बताना है तो आप कौन हो, तो आपके साथ मिथ्या दर्शन है क्या, सम्यक दर्शन है, ऐसी जब दर्शन की बात आती है सम्यक या मिथ्या, तो वह श्रद्धा गुण की अपेक्षा से बात चल रही है, इतना हमें ख्याल में रखना है। तो मेरा एक प्रश्न है कि ज्ञान दर्शन में जो दर्शन गुण है उसका विभाव रूपर्णमन होता है वो कैसा होता है? हाँ अरविंद, नहीं होता है। और ज्ञान गुण का देखो, आप तो कह रहे हैं बराबर, लेकिन दर्शन गुण में भी विभाव परिणमन नहीं होता है, वैसा ज्ञान गुण में भी कभी गलत जानना नहीं होता है। गलत इन द सेंस ज्ञान में भी विभाव रूप परिणमन नहीं है, ज्ञान तो जानना 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 कर रहा है, लेकिन श्रद्धा के कारण उसमें कुछ विपरीतता आ जाती है, वो भी आगे शायद इसमें आएगी। ये तो हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ा था, तीन विपरीतता बताई थी, याद है प्रेरणा में आपको? सम्यक ज्ञान होने में तीन विपरीतता होती है, न होने कारण विपरीतता, भेदाभेद विपरीतता और स्वरूप विपरीतता, स्वरूप विपरीतता। यानी ये श्रद्धान खोटा होने के निमित्त से ज्ञान भी ऐसा उल्टा हो जाता है, यानी कार्य होता है दूसरे से और हम कारण से कार्य होता है ऐसा मानते हैं। स्वरूप विपरीतता कुछ अलग है, स्वरूप कुछ अलग है, कि वितरकता से धर्म होता है तो हमने शून्य से धर्म होता है ऐसा मानना और जानना चालू कर दिया, इसलिए भेदाभेद विपरीतता। भेदाभेद विपरीतता जानना है? आपने शुरू शुरू में जब सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ी थी है ना, याद है क्या? उसमें तीन संबंध देखे थे, मैं बताऊंगा आपको। एक क्षेत्रावगाही संबंध, वो किसका किसके साथ होते हैं भाई? छह द्रव्यों का आपस में होता है। दूसरा है नित्य तादात्म्य संबंध, वो किसका किसके साथ होता है? हाँ, द्रव्य का गुणों के साथ कहो या गुणों का द्रव्य के साथ कहो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। हा? और अनित्य तादात्म्य संबंध वो किसका किसके? द्रव्य का और पर्याय के साथ, या पर्याय और द्रव्य के साथ संबंध है। तो ये नित्य तादाद में संबंध यानी क्या? कभी भी गुण जो है वो द्रव्य से जुदा नहीं होता, दोनों का हमेशा है और तादाद में यानी एक में खो गया है, यानी अभेद है, ऐसा वहां वो नित्य तादाद में संबंध बताता है। तो एक प्रश्न ऐसा भी खड़ा होता है कि गुण और द्रव्य इनमें ये भेद रूप है या अभेद रूप है? ख्याल में है? तो ये भेद किस अपेक्षा से है भाई?
भेद माने नाम अलग है।
हाँ, नाम अलग है। बोल ले उनको, बोल ले। क्योंकि वो सही रास्ते में, तुम बताओगे तो गलत रास्ते में जाएंगे। जेपी साहब आप जानते हैं भेद किस अपेक्षा से है? नहीं। अच्छा 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 अच्छा, हाँ बताइए साहब। हाँ आप बता रहे हैं, चलो बोलो साहब। हाँ, संज्ञा और संख्या अपेक्षा और कोई खास विशेष? लक्षण और प्रयोजन। देखो देखो, अभी हम दूसरी अपेक्षा से देखेंगे। हाँ देखो देखो, जरा बात ऐसी होती है कि द्रव्य और गुण ये भेद रूप है या अभेद रूप है, ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो हमने तो नित्य तादाद में संबंध देखा था, यानी नित्य यानी त्रिकाल हमेशा, तादाद में यानी एक एक संबंध है। जैसे अग्नि में से उष्णता कोई दूर कर सकता है क्या?
नहीं।
हाँ, शक्कर में से मिठास, जीव में से ज्ञान कोई अलग करेगा? क्योंकि उनका नित्य तादाद में संबंध है। ये तो मैं जरा थोड़ा पास ले रहा हूँ, आप समझदार हो। तो ये पूछा जाता है कि भैया फिर वो भेद रूप है या अभेद रूप है, तो हमने ऐसा देखा कि वो अलग अलग नहीं हो सकते हैं, तो वो अभेद रूप ही है। ऐसा कोई कहे तो वो गलत है। तो कैसा है? वे दोनों अभेद भी है और भेद रूप भी है। तो अभेद तो हमने देखा किस अपेक्षा से, कि जो गुण है, द्रव्य है और गुण है, दोनों का द्रव्य एक है। आत्मा कहो या जीव द्रव्य कहो, उसका द्रव्य कौन सा है? जीव द्रव्य। ज्ञान गुण है, उसका कौन सा द्रव्य है? तो जीव द्रव्य। तो दोनों का द्रव्य एक है, दोनों का क्षेत्र एक है और दोनों का काल एक है, लेकिन भाव में भिन्नता है। कांजी स्वामी जी हमेशा कहते थे, द्रव्य क्षेत्रे काले अभेद छे अने भावे भिन्नता छे। भाव दोनों के अलग अलग है,
इसमें
द्रव्य का भाव और गुण का भाव। फिर द्रव्य का नाम द्रव्य है और गुण का नाम गुण है, तो इन दोनों में नाम यानी संज्ञा भेद है, संख्या भेद है। द्रव्य एक है, गुण अनंत है और लक्षण भेद है। इस तरह से प्रयोजन भी दोनों का अलग अलग है। इस तरह से वो भेद रूप भी है और अभेद रूप भी है, क्योंकि अपना जैन दर्शन अनेकांतात्मक है, एकांतात्मक नहीं है। अगर हम नहीं नहीं बिल्कुल अभेद ही है कहेंगे तो तुम एकांत पक्ष में डूब गए। तो जैन दर्शन को क्या कहते हैं? अनेकांतात्मक। तो जैन दर्शन अनेकांतात्मक ही है ना, ये प्रश्न खड़ा होता है। अभी तो उत्तर दीजिए
नहीं।,
नहीं क्यों? अगर हम अनेकांतात्मक ही कहेंगे तो वो एकांत हो गया। ख्याल में आया? आपने उत्तर तो सही दिया, लेकिन जिस तरह से आप हंस रहे हैं उसके अर्थ एक्सप्लेनेशन की आपके शायद मालूम नहीं था। कोई बात नहीं, अच्छी बात है भाई, हम भी तो कहीं कहीं सुनकर ही आपको बता रहे हैं। ख्याल में है ना? ये क्या बात हुई कि जैन दर्शन अनेकांतात्मक ही है, तो ये तो एकांत हो गया। कौन सा एकांत? मिथ्या एकांत। और वो कथनचित अनेकांतात्मक है, तो सही बात है। तो यहां क्या बात हो रही है? यह जो दर्शन गुण है, वह दर्शन गुण जो है वो दो अपेक्षा से वापरा जाता है। एक स्वभाव की अपेक्षा कहेंगे तो वो अवलोकन मात्र जो जिसका परिणमन होता है, सत्ता स्वरूप जाने, यानी किसी को भेद किए बिना सबको एकदम है ऐसा जाने, जाने ने देखे, उसको दर्शन गुण कहेंगे। और ये दर्शन जो है वह श्रद्धा गुण की स्वभाव पर्याय या विभाव पर्याय, ये जब बात चलेगी तब कहेंगे ये श्रद्धा गुण की बात कर रहे हैं। अभी यहां क्या बात हो रही देखेंगे। दर्शन का अर्थ है श्रद्धा, ऐसा ही है, अन्यथा नहीं, ऐसा प्रतीति भाव, ऐसा श्रद्धान भाव, उसको कहेंगे दर्शन। अब ये तो उन्होंने बहुत सिंपल बताया, लेकिन श्रद्धा गुण जो है वो हमेशा अपना किसी न किसी में अपनत्व स्थापित करता है, श्रद्धान करता है कि मैं हूं। ये तो हमें सबको मालूम है कि तुम हो कि नहीं, हाँ भाई खड़ा हूं ना मैं हूं, पर मैं कौन हूं इसके बारे में गड़बड़ चल रही है। क्योंकि हम जहां जहां जाते हैं उस नाम से पुकारे जाते हैं। अभी हम आपसे पूछते हैं कि आप कौन हो, भैया दिखता नहीं कि मैं पुरुष हूं, आप कहेंगे मैं दिखता नहीं कि मैं अमीर हूं, दिखता नहीं कि मैं खूबसूरत हूं, और रस्ते में चलने तो कौन लोग क्या बोलेंगे, ये तो राग ही रहे, और तुम्हारे बीएसटी बस में बैठेंगे तो पैसेंजर, अच्छा पैसेंजर है, डॉक्टर के पास गए तो मरीज है, वकील के पास गए तो अशील है, कितना ही एक एक मिनट में बदल जाते हो, तो वह क्या तुम्हारा निरंतर एक ही कायम स्वरूप रहा क्या? नहीं, मैं हूं, लेकिन कौन हूं इसके बारे में हमें थोड़ी सी खिटपिट चल रही है। तो वो जो प्रतीति भाव है, यानी किसी न किसी में अहमपना स्थापित करना, ये श्रद्धा उनका कार्य है। यहां तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया है कि ऐसा ही है, यानी मैं आत्मा ही हूं, मैं जीव ही हूं, अन्यथा नहीं, ये सम्यक श्रद्धा नहीं। सम्यक ज्ञान संशय विपर्य और अनध्यवसाय रहित अपने आत्मा का तथा पर का यथार्थ ज्ञान सम्यक ज्ञान है। ये बात आगे आने वाली है, इसलिए आपको अपन यही उसको रोकते हैं। ये जो अभी बताया ना संशय विपर्य यानी विपरीत कारण विपरीत, संशय यानी ऐसा है कि ऐसा है, और अनध्यवसाय यानी बिल्कुल विरुद्ध मान्यता, उल्टी मान्यता करना, पर में अपने तो स्थापित करना, ये विपर्य ने विपरीत कारण विपरीत करना लिखा है। देखो संशय विरुद्ध विरुद्ध अनेक कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशया, अर्थात ऐसा है कि ऐसा है, इस प्रकार परस्पर विरुद्धता पूर्वक दो प्रकारों ज्ञान को संशय कहते हैं। देखो देखो अभी इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये आपके घर में वो बड़ी बड़ी पुराने जमाने की घड़ी आती है, उसमें पेंडुलम होता है, पेंडुलम, तो पेंडुलम क्या करता है, कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता है, स्थिर होगा तो टाइम नहीं दिखाएगा, घड़ी बंद पड़ेगी, तो इधर 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 इधर, वैसा ये जो जिसके मन में संशय है वो नक्की कर ही नहीं सकता है कि यहां जब मैं स्वाध्याय में बैठता हूं ना तो मैं जीव हूं, ये पक्का होता है, लेकिन एक घंटा होने के बाद पैर दुखने लगते हैं ना, तो फिर ये मैं शरीर रूप हूं ऐसा मानने लगता है। क्यों भाई? यानी हमारा कोई निर्णय नहीं हुआ है। अब ये तो मजाक के लिए मैं बता रहा हूं, लेकिन जैसा ये पेंडुलम इधर से इधर कुछ नक्की नहीं होता है उसका, और जो विपरीत ज्ञान है वो कैसा है, मान लो कि जो सत्य परिस्थिति उससे उल्टा जानकर उसी को मानना और जानना कि ऐसा ही है, वो विपरीत काम हो। तो यहां क्या कहते हैं, देखो ये तो बहुत आसान आपको एक उदाहरण दिया, यहां बहुत अच्छा बताया है कि ऐसा ही है, ऐसा है कि ऐसा है, इस प्रकार परस्पर विरुद्धता पूर्वक दो प्रकार रूप ज्ञान को, वो उसका डिसीजन नहीं हुआ है, यानी मुझे अभी नक्की नहीं हो रहा है, क्या नक्की नहीं हो रहा है कि शुद्ध भाव से धर्म होता है कि शुभ भाव से धर्म होता है, क्या निमित्त से कार्य होता है कि उपादान से कार्य होता है, पाली थाना चढ़ के आने से धर्म होता है कि शिखर जी चढ़ के आने से धर्म होता है, ये जो है ना ये संशय अभी विरुद्ध प्रकार रूप, अभी यहां तो ये शिखर जी से भी धर्म नहीं होता है, लेकिन बात आ गई तो बोल दिया। कि परस्पर विरुद्धता पूर्वक दो प्रकार रूप ज्ञान को संशय कहते हैं। जैसे आत्मा अपने कार्य को कर सकता होगा या जड़ के कार्य को, यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करता है क्या नहीं, ये देखो ना, ये देखो ये मैंने उठाया और आप ना बोलते हो, ऐसा संशय भी है बाकी। शुभ राग रूप व्यवहार से धर्म होगा, ये देखो लिखा ही है, लिखा शुभ राग रूप व्यवहार से धर्म होगा या वितरकता रूप निश्चय से, इसमें अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, संशय बाकी है। उसको कहेंगे संशय रूप जो दोष चल रहा है समय क्या है, विपर्य विपरीतैक कोटि निश्चयो विपर्य, अर्थात वस्तु स्वरूप से विरुद्धता पूर्वक ऐसा ही है। इनके तो निश्चय हो गया, कंफर्मेशन हो गई, वो पेंडुलम जैसा इधर उधर 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 भाग नहीं रहे, उसने तो नक्की किया भाई ऐसा ही है, लेकिन वो कैसा है, वस्तु स्वरूप से विरुद्ध बात है, तो कहते ऐसा ही है। इस प्रकार एक रूप ज्ञान विपर्य है, और ऊपर कैसा था, दो प्रकार रूप ज्ञान उसको संशय कहा, ये विरुद्धता से एक रूप ज्ञान उसको विपर्य कहा। जैसे शरीर को आत्मा जानना अनध्यवसाय, किम इति आलोचन मात्रम अनध्यवसाय, अर्थात कुछ है ऐसा निर्धार रहित विचार अनध्यवसाय है। यानी क्या कहना चाहते हैं, हम रास्ते में जा रहे हैं और पैर में जूते नहीं है, तो पैर को किसी बात का स्पर्श हुआ, मुलायम मुलायम कुछ था, तो क्या अंधेरा था ना, तो क्या था ये समझ में नहीं, था तो कुछ यानी उधर कुछ क्या है, पार्टन निर्णय वाली बात नहीं, उधर कुछ भी है लेकिन क्या है ये पता नहीं है, कुछ तो है या निर्णय है। अभी थोड़ा खोटा उदाहरण देता हूं, नंगे पांव से हम जाएं और कहीं मुलायम पैर में लगे, ऐसा नरम नरम कुछ तो भी लगा, लेकिन क्या लगा, किसी ने क्या हुआ, क्या बोलते हैं वो मेंढक था क्या, वो घास का कुछ और कुछ था, घास नरम था ना, कुछ तो था लेकिन क्या था ये पता नहीं। जैसा हम तो बहुत बार देखते हैं कि पैर को मार लगा तो खून तो आ रहा है, कब मार लगा क्या लगा मालूम नहीं है, हुआ तो सही कब हुआ क्या हुआ वो मालूम है, ऐसा भी होता है ना, वैसा वो क्या है अनध्यवसाय है। क्या कह रहे, देखो कुछ है ऐसा निर्धार रहित विचार, वो अनध्यवसाय है, निर्णय नहीं है, पहले में तो विरुद्ध कुछ नहीं, ये करो क्या वो क्या वो क्या ऐसा था ये है कि वो है, दूसरे में यही है लेकिन विरुद्ध बात, इसमें कुछ तो है लेकिन क्या है उसका निर्णय नहीं है। इसलिए कहते हैं ऐसा निर्धार रहित विचार अनध्यवसाय है। अभी उन्होंने उदाहरण बहुत अच्छा दिया, जैसे मैं इसलिए ऐसा खोटा उदाहरण देता हूं, एक दफे वो ज्ञान में आ जाए तो फिर अनध्यवसाय भूले नहीं। क्या कह रहे हैं, मैं कोई, जैसे मैं कोई कुछ हूं ऐसा जानना, यानी अपने बारे में निर्णय नहीं होना, मैं कुछ तो भी हूं तो सही ऐसा। विशेष जीव और आत्मा दोनों शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, यानी वहां उन्होंने कभी जीव लिखा कहीं आत्मा लिखा, तो यहां वो बता रहे हैं इन जनरल कॉमनली जीव और आत्मा कहने से दोनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ग्रामेटिकली हम देखेंगे तो जीव कहने से सभी जीवों की बात होती है तब जीव कहते हैं, और आत्मा कहते हैं तब अपनी स्वयं की बात होती है। जैसे अंग्रेजी में आई इज ऑलवेज कैपिटल, ऐसा जीरो आई कोई नहीं लिखते हैं।
अनुदेश और दर्शन में क्या डिस्टिंक्टली क्या फर्क है, दर्शन भी बताता है कुछ है
नहीं,
दर्शन
नहीं
सामान्य अवलोकन करता है ना,
तो कुछ है,
है, है
देखो देखो, आपका पूछना ये है कि जो दर्शन गुण का कार्य है और अनंत व्यवसाय का जो कुछ अभी आपने वर्णन किया, क्या दोनों एक ही है या अलग अलग है?
क्या फर्क है?
देखो, सामान्य अवलोकन यानी अभी आपको पूरी सब बात बतानी पड़ेगी, बताऊंगा कुछ बात नहीं, हम पीछे नहीं जाएंगे, बिल्कुल समझते समझते आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा विषयांतर होके, क्योंकि बात ऐसी है मैं इन शॉर्ट कभी बता नहीं पाता। केवल ज्ञान किसी के है, सुनना हो तो केवल ज्ञान क्या क्या जानता है आप जानते हो? देखो, विश्व के जो अनंत द्रव्य है, एक एक द्रव्य में अनंत गुण है, तो अनंत द्रव्यों के अनंत अनंत गुण है, और उनके एक गुण की तीन काल की पर्याय अनंत है, तो अनंत द्रव्यों के अनंत गुणों की तीन काल की अनंत अनंत पर्याय है, उसको भी जानता है। कितना जानता है? अनंत 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 पदार्थों को जानता है और सबको जुदा जुदा जानता है। ये केवल ज्ञान। अब केवल दर्शन क्या करता है? केवल दर्शन, अभी जो हमने इतने सारे अनंत देखे, मान लो कि 10 अनंत देखे अलग अलग है, तो 8-9 तक आएंगे, आप 8 अनंत को जानते हैं, उसका भी हिसाब है अपने पास, तो उसको अलग 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 जुदा जुदा जानता है। लेकिन दर्शन गुण सबको युगपद भेद पाड़िया बिना, यानी ये घड़ी है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ऐसा भेद नहीं करेंगे, बस है, दैट्स इट, कुछ है नहीं, नहीं है बस, वो सामान्य अवलोकन उसको कहेंगे। और ये विशेष अवलोकन यानी वो भेद करके युगपत सबको एक साथ जानते हैं, और ये युगपत सबको एक साथ भेद पाड़ा बिना जानते, वो दर्शन गुण का कार्य। अभी वो केवली के ज्ञान से हमको जल्दी समझ में आता है, इसलिए केवल ज्ञान की बात करें। अभी आपके और हमारे भी हर समय दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, यानी पहले सामान्य अवलोकन होता ही है। ये अभी हिमच के भाई साहब आए थे ना, वो इसी बात पर बहुत बहस चालू हो गई थी उनकी।
कई क्षेम जानो, उस जानने के पहले दर्शन हो गया। अन्न व्यवसाय वाला जो ज्ञान है,
दर्शन से आगे नहीं बढ़ा,
बिल्कुल बड़ा
बड़ा।
अन्न व्यवसाय तो ज्ञान की पर्याय, उसके पहले दर्शन हो चुका।
ज्ञान के पहले अभी मति ज्ञान है, मति ज्ञान के 4 महीने, वो भी आएगा, अवग्रह आवाज धारणा, वो भी आएगी सब बात। बहुत अच्छा है, हम इंटरेस्ट लेते हैं। ये निश्चित है कि अनंत व्यवसाय और दर्शन गुण का कार्य जो हो रहा है, सामान्य अवलोकन बिल्कुल जुदा है, वो तो ज्ञान दर्शन गुण की पर्याय है, देखना रूप, और ये तो ज्ञान गुण की, या जिसमें हम मिथ्या ज्ञान कहेंगे उसको, उसकी वो बात है।
ये मन जीव और आत्मा इसलिए बताया है, कितने लोग ऐसा कहते कि जिसको हम सजीव प्राणी कहते हैं ना, उसके लिए जीव देखते हैं, ये मनुष्य है वो तो जीव है, ये कुत्ता ये जीव है, और जो जीव द्रव्य आत्मा है वो अलग है, उसके लिए वो आत्मा शब्द यूज करते हैं। मेरे ख्याल से वैष्णव में तो ये ऐसी बातें होती है, और भी किसी पंथ में ये दो शब्द अलग अलग अर्थ में लेते हैं, बहुत से लोग पूछते भी है, इसलिए जीव और आत्मा एकार्थी है ये बता रहे हैं।
ये जीव की बात निकली, इस पर से एक और एक बात बताई देता हूँ आपको। ये जो शरीर है ना, ये तो बिल्कुल अभी इसी समय डेड बॉडी है, मुर्दा है, लेकिन इसको क्या कहा जाता है? ये आदमी सजीव है, यानी सजीव जीव के साथ रहने वाला है, और जब मान लो कि लौकिक में मर जावे तो अभी ये निर्जीव है, लेकिन अभी फिलहाल निर्जीव ही है, ये शरीर कुछ नहीं जानता है। क्यों? शरीर जानेगा तो मुर्दा भी जो है वह भी जानना चाहिए, उसको उठा के फर्नेस में रखते हैं, अग्नि पे चढ़ाते हैं, तो उठ के भागना चाहिए शरीर, उसके ज्ञान ही नहीं ना। जानन रूप जो शक्ति थी आत्मा की, वो आत्मा ही वहां नहीं रहा है, इसलिए उसको सजीव कहेंगे। आप हम सब कैसे प्राणी हैं? सजीव प्राणी हैं। मरने के बाद निर्जीव हो गए, यानी वो शरीर को ही अपनापन मानते हैं ना, इसलिए ऐसी बात चलती है। आप कुछ बता रहे थे? अच्छा, अब सम्यक चारित्र, यहाँ सम्यक पद अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के लिए प्रयुक्त किया है। क्या कहना चाहते हैं? ये जो सम्यक शब्द है, पद यानी शब्द, कैसा है? अज्ञान पूर्वक आचरण, ये आचरण यानी बाह्य आचरण की बात चल रही है कि भाई हमने इतने उपवास किए, अभी दूसरी भाषा में कहो तो हमने इतने वर्षी तप किए, ऐसा कुछ होता है? इतने हम रोज दिन में दो बार सामायिक करते हैं, तीन बार सामायिक करते हैं। एक्चुअली जो साम्य भाव पैदा हो जाना वह सामायिक है। समता वृत्ति की निष्पत्ति के लिए जो करा जाता है उसको भी उपचार से सामायिक कहते हैं, लेकिन सामायिक यानी समता पैदा होना, यानी वितरकता की वहां अनुभूति होना, वह सामायिक है। और वह प्राप्त करने के लिए श्रावक को भी सामायिक प्रतिमा होती है, तीसरी प्रतिमा हमने जो देखी थी। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? अज्ञानता के वश, अभी हमने ऐसा भी बहुत बार देखा है कि पंचाग्नि तप तपते हैं, यानी सब बाजू अग्नि जलाते बड़े बड़े और उसके बीच में जाके तप करते हैं, उसको पंचाग्नि, और उसमें धर्म होता है ऐसा मानते हैं। ऐसे बहुत सारे, एक टांग पे खड़े होना, पानी में गले तक के डूब के वहां तप करना, ये तप नहीं है। एक्चुअली ये कॉन्सेंट्रेशन करने के पूर्व की तैयारी है। आत्मा का स्वरूप हम जानते हैं तो उसी में एकाग्रता कर पाएंगे, केवल बाह्य आचरण से आत्मा का अनुभव नहीं होगा। मुझे तो ये इस बात पे तो बहुत गुरुदेव के एक शब्द ऐसे याद आते हैं कि उपवास करी करी ने पेट ने खाड़ा पाड़िया तो का आत्मा ना अनुभव था, ऐसा पूछते हैं। कितनी बार क्या बोलते हैं, पहाड़ चढ़ के आए, तीर्थ क्षेत्र जाके आए, ऐसा क्या होने वाला? कितना करोड़ों रुपए का दान देगा तो आत्मा का अनुभव होगा? आत्मा का स्वभाव स्वरूप जानकर उस रूप ही मैं हूं, ये लिखा ना, ये अभी यहां बताया ना अपने को, दर्शन क्या है? ऐसा ही है, मैं ऐसा ही हूं, अन्यथा नहीं हूं। ऐसी जब श्रद्धा हो जाए तो आगे का काम शुरू ही होता है, क्योंकि पहले ज्ञान से जाना है कि मैं ऐसा हूं। लेकिन वो जब तक श्रद्धा को उसको सर्टिफाई नहीं करता है तो ज्ञान को सम्यक ज्ञान भी नहीं करेगा। ये बात यहां क्या बात हो रही है? अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के लिए, यानी निवृत्ति यानी उससे हम हट जाए और स्वरूप में स्थिरता रूप आचरण करें,
इसको लॉक करने के लिए सम्यक शब्द,
इसके लिए ये सम्यक चारित्र सम्यक शब्द यूज किया है। सम्यक दर्शन, ज्ञान पूर्वक आत्मा में स्थिरता का होना सम्यक चारित्र है। देखो ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि आत्मा में स्थिरता कब हो सकती है या होनी चाहिए, तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन यानी यथार्थ श्रद्धान भी आवश्यक है, उसके साथ साथ यथार्थ ज्ञान भी होना चाहिए। जब यथार्थ दर्शन और यथार्थ ज्ञान पूर्वक जब स्वरूप में स्थिरता होगी तो उसको सम्यक चारित्र कहेंगे, उसके बिना तो आत्मा में स्थिरता होगी ही नहीं। इसलिए कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक आत्मा में स्थिरता होना सम्यक चारित्र है। यह तीनों क्रमशः आत्मा के श्रद्धा ज्ञान और चारित्र गुणों की शुद्ध पर्याय है। मोक्ष मार्ग, यह शब्द एक वचन है जो यह सूचित करता है कि मोक्ष के तीन मार्ग नहीं किंतु इन तीनों का एकत्व मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग का अर्थ है अपने आत्मा की शुद्धि का मार्ग, पंथ, उपाय। मोक्ष का मार्ग कहो या मोक्ष का उपाय कहो, यहाँ दोनों गुजराती और हिंदी टाइटल जो दिए ना इसमें समन्वय आ गया। अरविंद भाई समझ में आया, आत्मा के शुद्धि का उपाय यानी मोक्ष मार्ग का उपाय, या मोक्ष मार्ग जो निश्चय मोक्ष मार्ग है सब उसका एक ही अर्थ है ऐसा बता रहे, उसे अमृत मार्ग स्वरूप मार्ग अथवा कल्याण मार्ग भी कहते हैं। इस सूत्र में अस्थि से कथन है जो यह सूचित करता है कि इससे विरुद्ध भाव जैसे कि राग पुण्य इत्यादि से धर्म होता है या वे धर्म में सहायक होते हैं, इस प्रकार की मान्यता ज्ञान और आचरण मोक्ष मार्ग नहीं है। इस सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी कहा है वह निश्चय रत्नत्रय है। रत्नत्रय यानी त्रय यानी तीन, और रत्न ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीन रत्न कहे गए जाते हैं, सम्यक ये तीनों रत्नत्रय कहेंगे। क्या कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी कहा है वह निश्चय रत्नत्रय है, व्यवहार रत्नत्रय नहीं है। इसका कारण यह है कि व्यवहार रत्नत्रय राग होने से बंध रूप है। नलिन भाई अगर आपको याद होगा तो बहुत साल पहले मैंने पूछा था व्यवहार सम्यक दर्शन ये कौन से गुण की पर्याय है, बोलो भाई, ये प्रश्न हमने इनसे पूछा था, व्यवहार सम्यक दर्शन ये कौन से गुण की, किस द्रव्य के कौन से गुण की पर्याय है। अरे वाह वाह वाह, तो इस पे झगड़ा हुआ था, दर्शन लिखा है ना, अरे भैया वो चारित्र को ही दर्शन कहना यही व्यवहार है। यहाँ क्या बताया देखो साहब, व्यवहार रत्नत्रय राग होने से, व्यवहार रत्नत्रय का अर्थ क्या, जो सच्चे देवगुरु शास्त्र है उनके प्रति अहोभाव होना, उनके प्रति आदर होना, उसको उनकी पूजा अर्चा आदि जो कुछ बातें होती है वो करना, ये कैसा है, राग रूप है, और राग है तो उसका बंध तो होगा ही होगा। तो कौन सा राग होगा शुभ राग, लेकिन ये चौकड़ियों में गिनना है तो कौन से तीन, तो प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन, उसमें जो राग रूप है बोले। इस सूत्र में मोक्ष मार्ग शब्द निश्चय मोक्ष मार्ग बताने के लिए कहा है ऐसा समझना चाहिए। अब आगे की बात हम कल देखेंगे, परसों। जावानी के ज्ञान ते सूझे नो कालो सोवाणी सकल नमो सदा करो।